प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रविष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवारों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि यूहन्ना ने देखा कि मंदिर से 7 स्वर्गदूत निकले। इन स्वर्गदूतों को परमेश्वर के प्रकोप के 7 सोने के कटोरे दिए गए और किसी ने उनसे कहा, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। पहले स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा उंडेला तब पशु के अनुयायियों के शरीरों में फोड़े निकले जो कैंसर से भी अधिक भयानक थे। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उंडेला तो समुद्र में सब प्राणी मरकर सड़ने लगे। तीसरे स्वर्गदूत ने पीने के पानी पर अपना कटोरा उंडेला तो पानी कहीं भी पीने योग्य नहीं रहा, सारा जल लहू बन गया। अब हम आगे देखेंगे चौथे कटोरे का उंडेला जाना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा हुआ है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। हमारे प्रभु यीशु ने महाक्लेश के समय सूर्य में प्रकट होने वाले चिन्हों के बारे में कहा था। लुकार्ची सुसमाचार 21 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। सूर्य की गर्मी बहुत अधिक हो जाने के कारण महाक्लेश के दंड के बारे में पुराने नियम में भी बहुत कुछ कहा गया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय के 24 पद में लिखा है, वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से नष्ट हो जाएंगे, और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूलि पर रेंगने वाले सांपों का विष छोड़ दूंगा। भविष्यद्वक्ता यशाया भी इसकी चर्चा करता है। यशाया नबी की पुस्तक 24 अध्याय उसके 6 पद में वह कहता है, इस कारण पृथ्वी को शाप अर्थात बर्बाद और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और आगे यशाया 42 अध्याय के 25 पद में वह कहता है, इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया, और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न समझा, वह जल गया तो भी ना चेता। मलाकी की भविष्यवाणी में कहा गया है, मलाकी नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 पद में, क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, इस काम के लिए परमेश्वर को बस वायुमंडल से एक या दो आवरण हटाने की आवश्यकता है, या पृथ्वी को थोड़ा सा सूर्य के निकट करना है कि कोई नहीं बचेगा। यशाया के इस भविष्यवाणी के द्वारा से हम पाते हैं कि कोई नहीं बचेगा। इसी भयानक दृश्य के संदर्भ में यशाया कह रहा था कि पृथ्वी भस्म हो जाएगी। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 22 पद में, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु उसके अपने सुरक्षित रखे जाने के बारे में भी हम पढ़ते हैं। भजनकार कहता है भजन संहिता 121 के 6 में, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। यद्यपि आज यह प्रतिज्ञा हमारे लिए महत्व नहीं रखती, महाक्लेश में परमेश्वर के भक्तों के लिए यह ढाड़स बंधाने वाली ठहरेगी। लिखा है, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। परमेश्वर से दया की भीख मांगने की अपेक्षा उन्होंने उसके नाम की निंदा की। मेरे प्रियो, इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य का मन असाध्य दुष्ट है। उसे कैसा भी दंड दिया जाए वह शुद्ध नहीं होगा, न ही बदलेगा। परंतु महाक्लेश कलीसिया के शोधन के लिए नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा है कि पवित्र जन महाक्लेश में शुद्ध किए जाएंगे, वह तो पृथ्वी का दंड होगा। आइए हम देखेंगे पांचवा कटोरा जिसका उंडेला जाना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। लिखा है, उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। इससे स्पष्ट होता है कि अध्याय 13 का पहला पशु एक मनुष्य है। वह एक राज्य का प्रतीक है, क्योंकि राज्य बिना राजा नहीं हो सकता है। तब आगे लिखा है, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। मेरे प्रियो, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक विचित्र अंधकार है जिसे काला प्रकाश कहा जा सकता है। यह एक भयानक घटना होगी। जब सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है तब वह ज्योतिर्मय होने की अपेक्षा काला पड़ने लगता है। उसकी गर्मी तो अधिक होगी परंतु प्रकाश कम होगा। मिस्र पर जब नौवीं विपत्ति आई थी तब वहां भी ऐसा ही अंधकार छा गया था, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय उसके 21 और 22 पद में पढ़ते हैं। पुराने नियम के भविष्यद् वक्ताओं ने इस आने वाले अंधकार के विषय में बहुत कुछ कहा है। यशाया नबी की पुस्तक 60 अध्याय के 2 पद में लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 1 और 2 पद तथा 31 पद में लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद फिर कभी किसी पीढ़ी में होगी। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त नाहुम, आमोस और सपन्या भी यही कहते हैं। प्रेरित यूहन्ना तो बस यही कहता है, यह महाक्लेश का समय ही है जब सब भविष्यवाणियां परमेश्वर की योजना में उपयुक्त बैठती हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु ने स्वयं इसकी पुष्टि की है, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा। मेरे प्रियो, आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, लोग पीड़ा के मारे अपने अपनी जीभ चबाने लगे। इन कठोरों के दंड की उग्रता की कल्पना कीजिए, परंतु वे अपने दुष्टता से मन नहीं फिराएंगे, जैसा आज भी होता है। इस परिदृश्य में दो प्रत्यक्ष तथ्य हैं। पहला है, प्रकोप के कटोरे उंडेलने में परमेश्वर न्यायनिष्ठ है। हम सदा स्मरण रखें, प्रभु यीशु न्यायी है, वही दंड देने वाला व्यक्ति है, अर्थात दंडाधिकारी है। दूसरा है, तथापि मनुष्य कष्ट उठाकर भी मन नहीं फिराता है। रोमियो के पत्र 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद में प्रेरित पौलुस ने इसकी पूर्ण घोषणा की थी। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है? और यही है वह परमेश्वर का न्यायनिष्ठ दंड। मनुष्य फिर भी मन कठोर करके मन फिराव से इनकार करता है। हम आगे देखते हैं, 6वें कटोरे का उंडेला जाना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय के 12 पद में लिखा है, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। परमेश्वर के वचन में फरात नदी के महत्व का उल्लेख किया गया है, जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। सबसे पहले इसका उल्लेख उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय में किया गया है और बाइबल में इसका उल्लेख 25 से अधिक बार किया गया है। यहां इसका संदर्भ 6वीं विपत्ति के साथ है। यह पृथ्वी पर मनुष्य की प्राथमिकता को दर्शाता है, उसकी अवस्था से जुड़ी हुई बात को दिखाता है और उसकी अंतिम अवस्था में भी इसका उल्लेख किया गया है, जो महाक्लेश का युग है। यह नदी सभ्यता के उद्गम का झूला है और सभ्यता की कब्र भी यहीं नहीं होगी। यह नदी 2700 किलोमीटर लंबी नदी है, जो पूर्व और पश्चिम की सीमा है। यह एक चौड़ी एवं गहरी नदी है, जिसके कारण शत्रु का इसे पार करना संभव नहीं था। अब्राहम को इब्री कहा जाता था और कुछ विचारकों के अनुसार उसे इब्री इसलिए कहा जाता था कि वह फरात नदी के पार से आया था। फरात नदी परमेश्वर द्वारा अब्राहम को दिए गए प्रतिज्ञा के प्रदेश की पूर्वी सीमा थी। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय के 18 पद में लिखा है, इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नदी तक जितना देश है मैंने तेरे वंश को दिया है। यह नदी रोमी साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर थी। मेरे प्रियो, यह नदी चमत्कारी रूप से सूख जाएगी और पूर्व एवं पश्चिम की सीमा समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय के क्षेत्र के राजा हर्मगिदोन के युद्ध में आएंगे। प्राचीन काल में तामरलेन और चंगेज खान ने ऐसा ही किया था। यह अंतिम दिनों के परिदृश्य की एक झलक है। फरात नदी के सूखने के बाद पूर्व देश के असंख्य लोग, जो कभी पश्चिम की ओर नहीं गए, इसराइल के क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे और सुसमाचार को रौंदकर ख्रीस्त विरोधी को स्वीकार करेंगे। यह दृश्य अति भयानक है। इसमें क्या संदेह है कि जब करोड़ों लोग इसराइल में प्रवेश करेंगे तो लहू घोड़े की लगाम तक बहेगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मध्य वार्ता पृथ्वी के राजा हर्मगिदोन आते हैं। 6वें और 7वें प्रकोप के कटोरों के मध्य यह मध्य वार्ता है। 7 की प्रत्येक श्रृंखला के 6वें और 7वें दृश्य के मध्य एक अंतराल आ रहा है, केवल 7 नायकों को छोड़। यह अंतराल जानकारियों के लिए है। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। यह हर्मगिदोन का महायुद्ध है, कोई छोटा सा युद्ध नहीं है। मेरे विचार में महाक्लेश के मध्य काल में उत्तर दिशा से रूस का आगमन होने पर यह युद्ध छिड़ जाएगा। युद्ध क्षेत्र इसराइल से लेकर यहोशापात की तराई तक और एदोम के पर्वतों तक होगा। लगभग 3.5 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहेगा और इसका अंत तब ही होगा जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए स्वर्ग से उतरेगा। धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में रोग मुक्ति लेकर उदय होगा। जी हाँ, यहां नरक के त्रिएकत्व का उल्लेख किया गया है, शैतान, ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता। वे एकजुट होकर के विश्व के सब देशों को इसराइल के विरुद्ध उत्प्रेरित करेंगे कि पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्य को नष्ट करें। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी और अपने भक्तों से भी प्रतिज्ञाएं की हैं। उसने इसराइलियों के साथ भी वाचाएं बांधी हैं और ये वाचाएं अटल हैं। जैसे आज विश्वासियों के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 है। आज रूढ़िवाद के नाम पर एक विचार है जिसके अनुसार परमेश्वर का इसराइल के विभिन्न प्रयोजन समाप्त हो गया है और उसकी वाचाएं भी समाप्त हो गई हैं। उनके अनुसार परमेश्वर अब इसराइल के साथ अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति से बंधा नहीं है। तथापि पुराने नियम में परमेश्वर ने इसराइल से सैकड़ों प्रतिज्ञाएं की हैं। ऐसे बाइबल ज्ञाता लोगों का मानना है केवल प्रतिज्ञाओं के साथ शब्दों का हेर फेर ही ये करते हैं और उनके प्रतिपादकों का कोई भी दृढ़ आधार नहीं है। धर्मशास्त्र का वास्तविक अर्थ निकालने की जगह शब्द जाल बुनने का काम आरंभ करने वाला आरंभिक चर्च फादर एक उत्तरी अफ्रीका निवासी ओरिजन था। हमें याद रखना है कि बाइबल एक वास्तविक पुस्तक है। शैतान का तो उद्देश्य एकमात्र यही है कि इसराइल के साथ परमेश्वर की वाचा को नष्ट करे। यही कारण है कि शैतान संपूर्ण विश्व को संगठित करके इसराइल जैसे छोटे से देश के विरुद्ध खड़ा कर रहा है। यह महाक्लेश की घटना है। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी के अध्ययन में विकास के कारण मेरे विचार में भविष्यवक्ताओं को ध्यान में रखना है। और इतना ही नहीं, भविष्यवाणियों में शब्दों का हेर फेर जिसे आज अनेक व्याख्याता स्वीकार भी करते हैं, कलीसिया की झूठी शिक्षा बन गया है, अन्यथा बन जाएगा। अब हम इस भयानक दृश्य को देखते हैं। लिखा है मेंढकों के रूप में। अब यहां एक प्रश्न उठता है, क्या ये मेंढक ही होंगे? मिस्र में तो मेंढक भी आए थे, अतः यहां भी वे वास्तव में मेंढक ही हो सकते हैं, परंतु मैं उनके प्रतीक मानने को तैयार हूं। आप कहेंगे कि मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में किसी भी बात को प्रतीक मानने को तैयार नहीं हूं, जबकि स्पष्ट रूप से न कहा जाए कि वह प्रतीक है। जी हां, देखिए यूहन्ना क्या कहता है, मेंढकों के रूप में। वह यह नहीं कहता है कि मेंढक आए। मेरे विचार में यूहन्ना जो देख रहा था उसका स्पष्ट वर्णन करता है। जे ए सीस अपनी पुस्तक द अपोक्लिप्स लेक्चर्स ऑन द बुक, उसमें वो कहते हैं इन मेंढकों पर सजीव टिप्पणी करते हुए, कहते हैं वे अशुद्ध आत्माएं हैं, वे दुष्ट आत्माएं हैं, उन्हें अजगर के त्रिएकत्व ने काम करने के लिए भेजा था। वे चैनिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें पृथ्वी पर से परमेश्वर का नाम मिटा देने के लिए भेजा गया था। वे मेंढकों के रूप में हैं क्योंकि वे जगत के विषाक्त दलदल से निकलकर संसार में शाम के समय अपना काम करते हैं। वे सब देशों के कान भरते हैं और तब तक अपना प्रदर्शन करते हैं जब तक संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं और सेनाओं को मेमने और उसकी शक्तियों का दमन करने के लिए जोश से न भर दें। मेरे मित्रों, इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर की सात आत्माएं और प्रभु यीशु संपूर्ण जगत में निकले कि पवित्र जनों की एक महान कलीसिया को एकत्र करे। इसी प्रकार नरक की ये आत्माएं संसार के राजाओं और शासकों को एकत्र करके शैतान के उपासकों की एक महान सेना तैयार करें। आज प्रचार प्रसार के लिए समाचार माध्यम पृष्ठभूमि में बैठे लोगों के हित में अत्यधिक लाभदायी है। वे जनता का सोचना बदल सकते हैं। ठीक ऐसा ही दुष्टता का त्रिकत्व करेगा। वे संसार के सब देशों को इसराइल के विरुद्ध भड़काएंगे। केवल प्रभु यीशु ही इसे रोक पाएगा। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस सब इसराइल की सहायता नहीं परेशानियां उत्पन्न करेंगे। उनकी सहायता आकाश और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर से आएगी। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूं। प्रभु यीशु अपने कलीसिया में चोर के समान कभी नहीं आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय के 4 पद में लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। चोर को आप बाहर ही रखते हैं, आप उसका घर में स्वागत नहीं करते। बाहर जाते समय आप अपने द्वार यूं ही नहीं छोड़ जाते हैं या लिख करके नहीं जाते हैं, चोर महाराज, पीछे का द्वार खुला है और सोने का सामान अलमारी में है। आप चोर को तो घर में आने ही नहीं देंगे। अतः प्रभु यीशु कलीसिया के लिए चोर नहीं है जिसके आने की बाट वह जोह रही है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय के 13 पद में पौलुस कहता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। मेरे प्रियो, महाक्लेश के अंत में निश्चय ही प्रभु यीशु चोर के समान आएगा, जैसा कि इस पद में लिखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के आरंभ में हमने देखा था कि संपूर्ण पृथ्वी उसका शोक करेगी, क्योंकि वे नहीं चाहते कि वह आए। वे तो उसके पुनः आगमन को रोक देना चाहते हैं। यहां लिखा है, धन्य वह है जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है। ये वस्त्र कौन से हैं? एडरशिम इसके बारे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मंदिर का प्रधान पहरुआ रात में चक्कर लगाता था। यदि कोई पहरुआ सोया हुआ पाया गया तो उसकी पिटाई की जाती थी या उसके वस्त्र जला दिए जाते थे। मेरे विचार में इसका अर्थानुवाद इस प्रकार किया जा सकता है, अपना वस्त्र ना खो देना। सुनिश्चित करें कि आप मसीह की धार्मिकता धारण किए हुए हैं। आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 16 पद में, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। मेरे मित्रों, संपूर्ण धर्मशास्त्र में हर्मगिदोन नाम यहीं पर आया है, जबकि उसके संदर्भ अनेक हैं, जैसे मगिदो पर्वत जो एस्ट्रोलोन के मैदान में है। वह सबसे अधिक उपजाऊ तराई है। वहां प्राचीन काल में अनेक युद्ध लड़े गए हैं। मगिदो के एस्ट्रोलोन में और उसके मैदान में होने के प्रमाण आज भी हैं, और इसके हम उदाहरण भी देखते हैं। यह स्थान अशुर के राजा नबूकदनेस्सर के समय से लेकर नेपोलियन द्वारा मिस्र से सीरिया में प्रवेश करते समय तक उस क्षेत्र के प्रत्येक युद्ध के लिए एक छावनी डालने का स्थान था। यहूदी, अन्य जाति, सरसेन, मसीही योद्धा तथा मसीही विरोधी, फ्रांसीसी, मिस्री, फारसी, ड्रूस, तुर्क और अरब, हर एक देश की सेना ने एस्ट्रेलोन के मैदान में छावनी डाली थी और अपनी पताकाओं को ताबोर तथा हरमोन की ओस से गीला होते हुए देखा था। मेरे प्रियो, लिखा है कि उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया, चाहे शैतान हो या ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, एकजुट होकर के संसार के देशों को इसराइल के विरुद्ध में एकत्र करते हैं। अंततः वे परमेश्वर का उद्देश्य ही पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अपना उद्देश्य है और वह उसे पूरा करता है। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक बातों को सीखा है और आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। वचन पर बने रहें, उससे मांगे और उसमें बढ़ते रहें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।